लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, देना मानव में व्याप्त ईश्वरीय गुण को प्रकट करता है। जब हम किसी जरूरतमंद को, चाहे वह धन, समय, सहायता या सुझाव, जिसकी आशा लिए वह हमारे पास आता है, उदारता में निस्वार्थ भावना से अपने को देते, तो निश्चित रूप से हम ईश्वरीय कृपा की चादर से अपने को ढका हुआ पाते हैं। हमारा अपने को दूसरों के लिए देना इस भांति हमें ईश्वरीय वरदानों और कृपाओं में दोगुना करता है, क्योंकि ईश्वर उदारता में देने वालों की झोली को सदैव अपनी प्रेममयी आशीष से लबालब भरते हैं। श्रोताओं, ईश्वर ने हमें बिना मांगे ही असंख्य वरदानों से भर दिया है, और इस देने के द्वारा वे हमसे यही चाह रखते हैं कि हम अपने को मिली मुफ्त चीजों को दूसरे जरूरतमंदों के संग साझा करें। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अतः दूसरों के लिए अपने को देना हममें ईश्वरीय दिव्यता को प्रकट करता है, जिसे हम अपने हृदय की गहराई में सुख, शांति और संतोष स्वरूप सुकून सा अनुभव करते हैं। वही यह देना सबों के वश की बात नहीं है, क्योंकि मानवीय स्वभाव के अनुरूप हम देने की अपेक्षा अपने लिए पाने की चाह रखते हैं, और यदि हम अपने को देते भी हैं, तो उन्हें जिनसे हमें कुछ व्यक्तिगत फायदे की आस दिखाई देती हो, चाहे वह भौतिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक फायदे ही क्यों ना हो। श्रोताओं, 24वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सभी पाठ हमें हृदय खोलकर देने अर्थात क्षमादान देने का आह्वान करते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए उस मनोभाव की थाह लें। क्या हम अपने हृदय को सही अर्थ में खोलकर देते हैं? क्या हम अपने विरुद्ध गलती करने वालों को हृदय से माफ करते हैं? अपनों के बार बार गलती करने पर क्या हम उन्हें बारंबार क्षमा करने को तैयार रहते हैं? क्या हमारा माफीनामा शर्तहीन होता, या हम शर्त के साथ अपने विरुद्ध गलती करने वालों को क्षमा करते हैं?
तब पेत्रुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए, मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए, मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस तरह मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी?
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर सशक्त वचन हमें वह शक्ति प्रदान करे जिससे हम ईश्वरीय प्रेम से प्रेरित होकर अपने भाई बहनों को एक बार नहीं बल्कि उनकी मांग और आज्ञा अनुरूप सदैव सच्चे हृदय से क्षमा दे सकें, जो हमें हमारे घावों की चंगाई प्रदान करता और हमारे लिए ईश्वरीय कृपा का स्रोत बनता है। श्रोताओं, प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें प्रतिशोध की भावना से बचे रहने का आह्वान करता है। प्रतिशोध या बदले की भावना हम में तब पनपती है जब हम दूसरों के प्रति विद्वेष और क्रोध की भावना रखते हैं। यह हमारे हृदय के चोटिल होने की बात बयां करती है, जिसके फलस्वरूप हम दूसरों को चोट पहुंचाने की ताक में रहते हैं। लेकिन आज प्रभु हमें ऐसा करने से बाज आने को कहते हैं। वे हमें दूसरों को किसी तरह की हानि पहुंचाने के बदले क्षमा करने को कहते हैं, क्योंकि दूसरों को क्षमा करना हमारे हृदय में व्याप्त घावों की चंगाई लाती है। साथ ही यदि हम दूसरों को क्षमा प्रदान करते हुए अपने अपराधियों के लिए ईश्वर से निवेदन करते तो यह हमारे लिए ईश्वरीय कृपा का स्रोत बनता है। ईश्वर हमें अपनी गलतियों के लिए सहज ही क्षमा करते हैं। हमारा ऐसा करना हमें यीशु ख्रिस्त के संग कलवारी बलिदान के उस क्षण की याद दिलाता है जहां मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त ने अपने बैरियों के लिए पिता से प्रार्थना करते हुए उनके पापों को क्षमा कर दिया। श्रोताओं, यीशु ख्रिस्त के उस कलवारी क्रूस के उदाहरण का अनुसरण करना हमारे लिए बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन यह हमारे लिए असंभव भी नहीं है, बशर्ते कि हम यीशु ख्रिस्त से संयुक्त रहकर उनके मनोभावों को धारण करें। इसका जिक्र रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए करता है। हमारा यह जीवन ईश्वर के लिए है, अतः यदि हम जीते तो ईश्वर के लिए जीते हैं और मर जाते तो ईश्वर के लिए मर जाते हैं, क्योंकि यह जीवन हमें उनमें और उनके द्वारा मिला है। श्रोताओं, ईश्वर ने हमें अपने नेक कार्य के निष्पादन हेतु यह जीवन दिया है जिसके द्वारा उनकी महिमा और स्तुति होती है। इस भांति हमारे भले कार्य सकारात्मक रूप में न केवल हमें बल्कि दूसरों को और सारी पृथ्वी को प्रभावित करते हैं, तो उसी भांति हमारे बुरे कार्यों का हम सबों पर नकारात्मक असर होता है। यीशु ख्रिस्त हमारे लिए पिता ईश्वर के मुक्तिदाता पुत्र कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा बुराई अर्थात पाप के प्रभाव से हमें मुक्त किया है। ईश्वर ने हमें न केवल मुक्ति बल्कि विवेक और स्वतंत्रता प्रदान की है, और हम अपने विवेक के अनुरूप अपनी पूर्ण स्वतंत्रता में जिन चीजों का चुनाव अपने लिए करते वही चीजें हमें प्रभावित करती और हम उनके द्वारा होने वाले परिणाम अच्छाई और बुराई के भागीदार होते हैं। श्रोताओं, यह हमें आज के सुसमाचार में प्रभु संदेश को समझने में मदद करता है, जहां हम जिस तरह पाने की आशा करते देने का आह्वान करता है। सुसमाचार में हमने कर्जदार को स्वामी द्वारा माफ करने की बात सुनी, लेकिन वही कर्जदार अपने सह सेवक के कर्ज को माफ करने में आनाकानी करता और उसके संग कड़ाई से पेश आता है। यह हमारे मानवीय स्वभाव को उजागर करता है, जहां हम निश्चित रूप में पाने की आशा करते हैं, चाहे वह कोई भी चीज क्यों ना हो। वहीं देने की बारी आने पर हम अपने हाथों को अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। सुसमाचार में प्रभु इस बात को स्पष्ट रूप में कहते हैं कि यदि हम देने को तैयार नहीं तो हमें मांगने या पाने का भी कोई अधिकार नहीं है। यदि हम स्वामी से मिली चीजों को दूसरों को नहीं देते तो हमारे पास से वे सारी चीजें भी ले ली जाती हैं जो हमें उनसे मुफ्त में मिली हैं। आइए हम प्रभु से उदारता हेतु प्रार्थना करें, जिससे हम अपने हृदय को उनके लिए खोल सकें जो आशा लिए हमारे पास विनय के साथ आते हैं।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत समाचार। पोप फ्रांसिस ने एक ऐसी जीवन शैली अपनाने की सलाह दी है जिसमें बर्बादी और अनावश्यक खपत करने की प्रवृत्ति ना हो। उन्होंने पारिस्थितिक पाप के लिए पश्चाताप करने का आह्वान किया है। पारिस्थितिक पाप का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों का गैर जिम्मेदार ढंग से प्रयोग करना। मानव की इसी प्रवृत्ति के कारण इन दिनों दुनिया के किसी न किसी भाग में लगभग हर दिन प्राकृतिक आपदा की दुखद खबरें सुनाई पड़ रही हैं। संत पापा ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आइए हम हमारे पारिस्थितिक पाप के लिए पश्चाताप करें। जैसा कि मेरे भाई ख्रिस्ती एकता वर्धक वार्ता के प्राधिधर्म अध्यक्ष बर्थोलोमियो प्रथम ने आग्रह किया है, ईश्वर की कृपा से हम एक ऐसी जीवन शैली अपना सकें जो कम बर्बादी और कम अनावश्यक खपत से चिन्हित है। पोप फ्रांसिस ने शनिवार को वैटिकन के संत पेट्रस महागिरजाघर के प्रांगण में इटली के पुलिस अधिकारियों और सैनिकों से मुलाकात की और उन्हें ईश सेवक एवं मातृभूमि के नायक वाइस ब्रिगेडियर साल्वो डी एक्विस्तो से प्रेरणा लेने की सलाह दी। वाइस ब्रिगेडियर साल्वो डी एक्विस्तो ने एक इताली पुलिस के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था और 80 साल पहले 23 सितंबर 1943 को नाजी द्वारा पकड़े गए निर्दोष बंधकों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। संत पापा ने कहा, साल्वो डी एक्विस्तो ने अपने मिशन को आत्म त्याग की भावना से किया। साल्वो डी एक्विस्तो ने ऐसे समय में सेवा दी जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, यूरोप में नस्ल उत्पीड़न हो रहे थे और नफरत का तर्क प्रबल होता दिख रहा था। घृणा की शक्ति जो दया पर हावी हो रही थी उस समय वाइस ब्रिगेडियर की उदारता से कम हो गई, जिसने तुरंत दूसरों के स्थान पर खुद को प्रस्तुत किया और जिम्मेदार लोगों को आश्वस्त किया कि सिर्फ उसे फांसी मिलनी चाहिए। संत पापा ने कहा कि उसने यीशु का अनुकरण किया जो पिता द्वारा उनका प्रेम प्रकट करने के लिए भेजे गए थे और जिन्होंने हमें मौत की शक्ति से मुक्त करने और पाप से बचाने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया, हमारी पीड़ा को अपने ऊपर लिया और उनके घावों से हमें चंगाई प्राप्त हुई है। संत पापा ने कहा कि जब हम व्यक्तिवाद और असहिष्णुता हिंसा एवं घृणा से दूषित समय में जी रहे हैं, वाइस ब्रिगेडियर साल्वो डी एक्विस्तो हमें प्रेम की शक्ति का संदेश देते हैं। आपसे जो प्रतिदिन न्याय एवं कानून की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं, मैं कहना चाहूंगा कि इन सब का कारण और अंतिम लक्ष्य प्रेम में है। इसके लिए उन्हें त्याग और समर्पण, अनुशासन एवं तत्परता तथा जिम्मेदारी और समर्पण की भावना रखना आवश्यक है। इस कठिन समय में जब न्याय को अक्सर कुचल दिया जाता
वे संगठित अपराध, दंड से मुक्ति की भावना, माफिया मानसिकता और हर प्रकार की अनैतिकता के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बुलाए जाते हैं, ताकि वे मध्यस्थता, मानव संवर्धन और अच्छाई के मौ निर्माता बनकर शांति के शिल्पकार बने। विश्व भर के धर्मदक्षों को पत्र भेजते हुए कार्डिनल मारियो क्रेट्स ने विश्वासियों को आमंत्रित किया है कि वे सिनट की 16वीं महासभा के लिए प्रार्थना करें, जो वैटिकन में 4 अक्टूबर को शुरू होगा। कार्डिनल ने कहा है कि सिनट महासभा मूल रूप से आध्यात्मिक कार्यक्रम है, जो प्रार्थना और पवित्र आत्मा को सुनने पर केंद्रित है।
संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 16 सितंबर को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में कोरिया के करीब 200 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की, जो संत अंद्रेया किम ताइगोन की शहादत की 177वीं वर्षगांठ पर और संत पेत्रुस महागिरजाघर के बाहरी खंभों में से एक में स्थापित उनकी प्रतिमा की आशीष के अवसर पर रोम की तीर्थयात्रा पर हैं। संत पापा फ्रांसिस सहृदय उनका स्वागत करते हुए महान संत अंद्रेया किम के जीवन और विश्वास की गवाही के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया। संत पापा ने उन सभी को विशेष रूप से धन्यवाद दिया जिन्होंने इस परियोजना को साकार करने के लिए खुद को समर्पित किया। संत पापा ने श्री जोसेफ हान जिन सेप, उनकी पत्नी और प्रोफेसर मरिया को अपना आभार व्यक्त किया जिन्होंने मूर्ति बनाई। संत पापा ने अगस्त 2014 में अपनी कोरिया प्रेरितिक यात्रा को याद किया, जब उन्होंने 6वीं एशियाई युवा दिवस में युवाओं से मुलाकात की थी। उस अवसर पर संत पापा संत अंद्रेया किम ताइगान का जन्म स्थान सोलमो तीर्थालय गए थे। संत पापा ने उस तीर्थालय में मौन रहकर विशेष रूप से कोरिया और युवा लोगों के लिए प्रार्थना की थी। संत अंद्रेया किम पहले कोरियाई शहीद पुरोहित थे जो अभिषेक प्राप्त करने के तुरंत बाद ही कम उम्र में मारे गए थे। संत पापा ने कहा, संत अंद्रेया किम में सुसमाचार फैलाने का बड़ा जुनून था। खतरों के सामने और कष्टों के बावजूद पीछे न हटते हुए आत्मा की कुलीनता के साथ उन्होंने खुद को यीशु के लिए समर्पित कर दिया। उनके दादा और उनके पिता भी शहीद हो गए और उनकी माँ को भिखारी के रूप में जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। संत पापा ने कहा, उसे देखते हुए हम कैसे अपने दिलों में प्रेरितिक उत्साह पैदा करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकते हैं? एक ऐसी कलीसिया का संदेश बनने के लिए जो सुसमाचार के बीज को खुशी से फैलाने हेतु खुद से बाहर आती है, साथ ही दूसरों के साथ शांति और प्यार से जीवन व्यतीत करती है। संत पापा ने उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में शांति के दूत के रूप में अपनी बुलाहट को फिर से खोजने के लिए आमंत्रित किया। संत पापा ने कहा कि 2027 में अगले विश्व युवा दिवस का आयोजन स्थल सियोल होगा। संत पापा की आशा है कि वे विशेष रूप से युवा इसकी तैयारी के लिए उत्साहपूर्वक खुद को समर्पित करेंगे। और संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के कंसिस्ट्री भवन में क्रिसमस कॉन्टेस्ट 2023 में भाग लेने वाले युवा संगीतकारों का स्वागत किया। संगीत रचना एक कला है जिसमें सामंजस्य और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। संत पापा ने उन्हें याद दिलाया कि संगीत रचना जीवन के लिए एक रूपक है, दूसरों के साथ, समाज के साथ सामंजस्य बैठाना आवश्यक है। इसके कानून के उद्देश्य हर किसी के अस्तित्व और खुद को अभिव्यक्त करने के तरीके की मौलिकता को जगह देना है। संत पापा ने कहा, सद्भाव और रचनात्मकता एक दूसरे के विरोध में नहीं है। वास्तव में सद्भाव की खोज, जिसके लिए जीवन की तरह संगीत में भी प्रतिबद्धता, समर्पण और निरंतरता की आवश्यकता होती है, प्रत्येक की विशिष्टता को मुक्त करती है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।